ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले अफ्रीका के किसी जंगल में एक बार एक मनोचिकित्सक जाता है और वो मनोचिकित्सक इस बात का संशोधन करता है कि वहां के जो आदिवासी लड़के हैं उनका ज्ञान का स्तर क्या है। उसकी ऐसी इच्छा होती है कि ये जो आदिवासी बच्चे होंगे अफ्रीका के जंगलों में, उनको कुछ ज्ञान की बातें सिखाई जाए, समझाई जाए, ताकि उनका भी स्तर जो शहर के बच्चे हैं उस तक पहुंच जाए। तो वो ऐसे ही एक गांव में जाता है और वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, गांव के आदिवासी अनपढ़, छोटे छोटे खेल रहे होते हैं। तो वो उनको कहता है कि हम एक खेल करेंगे, हम एक रेस करेंगे, दौड़ लगानी है आपको। यहां से तो वो जो सामने पेड़ रखा है, दिख रहा है, वहां तक तुम्हें भाग के जाना है सबको, और जो भी फर्स्ट आएगा, वहां देख रहे हो इतने सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं थालियों में, जो फर्स्ट आएगा उसको वो सारे चॉकलेट्स मिल जाएंगे, जो सेकंड आएगा उसके लिए एक दूसरी थाली रखी है, और जो थर्ड आएगा उसके लिए छोटी सी एक तीसरी थाली रखी है। तो ऐसे तीन प्राइज है, आप सबको दौड़ लगानी है और भागना है, ताकि आपको हम देखेंगे फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन आता है, थर्ड कौन आता है, तीन प्राइज है। तो वो लगभग 100 बच्चे होते हैं। तो रेस शुरू होती है, वो सीटी बजाता है और सब लड़के भागने लगते हैं। परंतु ये क्या, वो सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं और भाग रहे होते हैं। आदिवासी जिनको ये सिखाने आया होता है कि शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन कैसे होना चाहिए, शहर के बच्चे कितने आगे चले गए, तुम कहां पिछड़े हुए, कहां रह गए, तो वह सभी बच्चे अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागने लगते हैं, भागने लगते हैं, और सबके सब फर्स्ट आ जाते हैं। तो वो पूछता है, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो वो सभी अपनी भाषा में चिल्लाते, उबुंटू उबुंटू उबुंटू। वो कहता है, उबुंटू, ये उबुंटू क्या है? तो वो छोटे बच्चे उसको समझाते हैं, आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम सब है, यदि एक भी दुखी रहता है तो मैं सुखी नहीं हो सकता, इसलिए सबको जीतना है, सबको आगे बढ़ना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबको हाथ में हाथ लेकर ही चलना होगा, भागना होगा, दौड़ना होगा, ताकि कोई पीछे ना रह जाए, ताकि एकता बनी रहे। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है एक ऊर्जावान सेवा केंद्र की नींव, बाप समान मास्टर पालनहार स्थिति। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि बाप समान और मास्टर पालनहार स्थिति क्या है, पहले तो ये समझना है ऊर्जावान सेवा केंद्र अर्थात क्या। किसे कहेंगे कि ये सेवा केंद्र शक्तिशाली है, ऊर्जावान है, वाइब्रेंट है, डायनामिक है, पावरफुल है? एक ऊर्जावान सेवाश्रम, सेवा केंद्र, सेंटर, मिनी मधुबन, यज्ञ की भूमि, यज्ञ स्थली किसे कहेंगे? और जहां हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर हम हैं, क्या उसे ऊर्जावान सेवा केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? क्या इस नाउन का प्रयोग वहां किया जा सकता है? क्या ये एडजेक्टिव हमारे सेवा केंद्र के पीछे लगाया जा सकता है कि ये सेवा केंद्र, ये विशेषण ऊर्जावान सेवा केंद्र है? सभी बहनें क्लास सुनते सुनते अपने सेवा केंद्र को आंखों के सामने लाएंगी। सेवा केंद्र दिखाई दे रहा है। पहला कमरा बाबा का कमरा, जहां पर क्लास होता है वो कमरा, और जो भी कमरे हैं और उसके बाहर का परिसर, वो सारा सेवा केंद्र। साक्षी होकर अपने ही सेवा केंद्र को देखो कि ये है सेवा केंद्र। भगवान इसे कैसे देखता होगा, क्या हो रहा है, किस तरह की बातें यहां चल रही है, भगवान के क्या संकल्प होंगे जब वो देखता होगा कि ये है मेरा सेवा केंद्र। कहा है मूल्यों में भविष्यवाणी, गली गली में होगा एक दिन। ये है मेरी वो गुरु भाई जिनको मैंने चुना है संसार से, मेरी चुनी हुई है एक एक। जीसस क्राइस्ट ने कहा है अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को, यू हैव नॉट चोजन मी, तुमने मुझे नहीं चुना है, आई हैव चोजन यू, मैंने तुमको चुना है, आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मैंने तुम्हें इस संसार से उठाया है, फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि तुम इस संसार के भोग विलास वासनाओं के लिए नहीं हो, तुम मेरे लिए हो, मेरे कार्य के लिए हो, इसके लिए मैंने तुमको चुना है। अव्यक्त महावाक्य है, कई बार आए हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। भगवान कैसे इस सेवा केंद्र को देख रहा है, सोचो वो घूम रहा है, हमारे सेवा केंद्र की प्रदक्षिणा लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है और देख रहा है कैसा है, कैसी स्थिति है। ये वो बहन है, ये वो मेरा बच्चा है, ये वो मेरी बच्ची है, ये वो निमित्त आत्माएं हैं, ये वो गुरु भाई है, ये वो टीचर्स है, इनकी स्थिति क्या है, यहाँ का वायुमंडल कैसा है, यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ के स्टूडेंट्स टीचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोच रही है। क्लास सुनते सुनते दो वाक्य के बीच जो अंतराल होगा, उसमें अपने सेवा केंद्र को देखना है, भगवान क्या सोचता होगा। ये है वो टीचर जिसको मैंने कितनी मुश्किल से तैयार किया, ये है वो बहन, कैसी कैसी परिस्थितियों से मैंने इसको खुद बचाया, कहां होती आज और कहां है भगवान देख रहा है। ये वो सेवा केंद्र है जो मैंने तैयार किया था वहां की सभी आत्माओं की सेवा के लिए, और इस आत्मा को निमित्त बनाया था। क्या उसके संकल्प है, कैसे उसके बोल है, कैसे उसके संबंध संपर्क है, कैसी उसकी सेवाएं हैं, पुरुषार्थ के प्रति कितनी वो सजग है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, एक भविष्यवाणी की थी कभी, उनकी मृत्यु 1902 में हो गई, एक जगह उन्होंने कहा था, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व को परमात्मा का संदेश देगी, ये भविष्यवाणी की थी। तब भगवान आए नहीं थे तरह पर, एक समय आएगा जिस आश्रम में, सेवाश्रम में, तीर्थ स्थान पर, मधुबन के ही एक अंश में, मधुबन के ही एक भाग में, मधुबन के ही बाजू के कमरे में ये सेवा केंद्र है। क्या वो ऊर्जावान है, क्या वो शक्तिदायी है, क्या वो आत्माओं में बल भरने वाला है, क्या जो निमित्त आत्मा है उनमें इतनी पावर है, भगवान देख रहा है। तो एक ऊर्जावान सेवा केंद्र में कुछ 7-8 महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। उसकी थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे और उसके बाद फिर मास्टर बाप समान पालनहार स्थिति, अर्थात बाप समान कैसे पालना करे उसकी। विश्वामित्र जब विश्वामित्र नहीं था और राजा था, बहुत युद्ध करता था, लड़ाइयां करता था, एक बार सेना थक गई और वहां वशिष्ठ का आश्रम था और अपनी सेना को लेकर वो वशिष्ठ के आश्रम में जाता है और वहां जाकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस आश्रम में ऐसी शांति, ऐसा परम सुख जो उसने कभी नहीं देखा। वहां के सारे जानवर अहिंसक है, शेर है, बकरी है, परंतु संपूर्ण अहिंसा है। वहां के वातावरण में एक अद्वितीय सुख, पवित्रता के प्रकंपन उसे लगते हैं। ऐसी शांति उसने कहीं नहीं देखी थी। और जब वो वशिष्ठ से मिलता है तो पूछता है, यहां ऐसा वातावरण क्यों है? तो वशिष्ठ उसे समझाते हैं, ये तप का बल है। यहां जो सन्यासी है, योगी है, शिष्य है, साधु है, इनके तपो बल के कारण ये भूमि इतनी पवित्र हो गई है कि यहां पर आने वाले जो जानवर है वो भी अहिंसक हो गए हैं। इतनी पावर। तो एक ऊर्जावान सेवा केंद्र भी ऐसा ही हो। सबसे फर्स्ट चीज ऊर्जावान सेवा केंद्र के लिए जो चाहिए वो है वहां रहने वाली आत्माओं की पवित्रता। जिस सेंटर पर जितनी अधिक पवित्रता, उनको सेवाओं के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सेवाएं उनके चरणों में आकर गिरेगी। सारा धन, सारी संपत्ति चरणों में आकर गिरेगी। किसी को बोलने की, किसी को कहने की, किसी को कुछ सूचना देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। स्वतः ही आएगी संपत्ति, ईश्वरीय कार्य स्वतः ही बढ़ेगा। और जहां पवित्रता में ही खंडन है वहां संघर्ष होगा, वहां विघ्न आएंगे, नए नए विघ्न, नई नई आत्माओं के द्वारा। वो विघ्न जो आ रहे हैं बाहर से नहीं, हमारे ही खंडित हुई पवित्रता से जन्म ले रहे हैं। अखंड पवित्रता अर्थात अखंड निर्विघ्न पवित्रता में वो बल है कि संसार की सभी आत्माओं को अपने आप टच कराएगा और उनको संकल्प देगा कि ये करो, शायद कहीं ना कहीं पवित्रता में थोड़ी कमी है, शायद अलबेलापन है, शायद पवित्रता कहीं ना कहीं खंडित हो रही है। दिन में तो नहीं, शायद स्वप्न में ऐसी निर्बाध पवित्रता जब होगी अपने आप सब कुछ होगा। सेवा केंद्र की पवित्रता को बढ़ाने के लिए अमृत वेले अपना एक फरिश्ता स्वरूप धारण करना और अपने ही सेवा केंद्र के बाहर एक रेखा खींचना कि इस रेखा के अंदर कोई भी विकार नहीं आ सकेगा। इस रेखा के अंदर कोई भी रावण लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं आ सकता। अशोक वाटिका है ये। रेखाएं खींच देना, एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन। दूसरा, जो क्लासरूम है जब वहां कोई भी नहीं हो, उस क्लासरूम के वातावरण को अमृत वेले यदि वहां योग नहीं कर रहे, उस क्लासरूम को सकाश देनी है ताकि वहां जो भी आ जाए, मिलने वाले स्टूडेंट्स सबके अंदर पवित्रता भर जाए। तीसरा, जहां हम सोते हैं वो बेड, वो कमरा, उसको भी सकाश देनी है, पवित्रता की सकाश। सबसे अच्छा योग सोते समय करने का है, ये हमारी खटिया है। अवचेतन मन सोते समय खुलता है, सुबह 5-10 मिनट और रात को सोते समय। यदि चेतन मन ये है, ये अवचेतन है, बीच में एक बैरियर है प्री कॉन्शियस, जैसे हम सोने जाते ये खुलता है और जो संकल्प तब किए जाते वो सीधा अंदर अंतर मन में चले जाते हैं। विकार के संकल्प होंगे तो विकार अंदर जाएगा, श्रेष्ठ सेवा के संकल्प होंगे तो वो अंदर जाएंगे, परमात्मा प्रेम के संकल्पों के साथ सोओगे तो वो अंदर जाएंगे, और जो सोते समय अंतिम संकल्प है उठते समय वही प्रथम संकल्प होता है। ये यदि खटिया है जहां हम सो रहे हैं, हमारा बेड, 7 पहरेदार खड़े करने हैं यहां पर, एक सिर के पास, एक यहां, 3, 4, 5, 6 और 7, और वो 7 पहरेदार 7 संकल्प, वो ऐसे संकल्प हो कि हमको संसार से डिटैच कर दे सोते समय, जैसे मैं संपूर्ण अनासक्त आत्मा हूं, किसी से कोई लेना देना नहीं, इसको यहां खड़े कर देना, मैं लगाओ मुक्त आत्मा हूं, मैं संपूर्ण वैरागी हूं, कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं जीवन की, वस्तुओं की, साधनों की, मैं संपूर्ण साक्षी हूं, सारे खेल को केवल देख रही हूं, मैं निर्मोही हूं, मैं बेहद का सन्यासी हूं, मैं इस संसार का हूं ही नहीं, मैं परम धाम निवासी हूं। 7 संकल्प, ये बेड, इन पहरेदारों को खड़े करो, फिर देखो कौन सा विकारी स्वप्न, कौन सा व्यर्थ संकल्प, कौन सा व्यर्थ स्वप्न आता है, और इन संकल्पों को करते करते सो जाना। रिपीट कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। कई बहनों की एक समस्या होती है नींद ना आना, अनिद्रा। हमारे पास बहुत सारी बहनें आती है ओपीडी में, रोज हम 20 बहनों को तो रोज जरूर देखते होंगे, भारत और विश्व भर की। नींद नहीं आती है, रात भर छत, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, होते होते 4 बज जाते और अमृत वेला कोई मजा नहीं, फिर से स्टूडेंट्स, और फिर दिन में बहुत नींद आती है, सुस्ती रहती है, कुछ करने की दिल नहीं होती है, उठते ही थकान, नींद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। संकल्प खड़े करने हैं 7 पहरेदार 7 बॉडीगार्ड। मैं अनासक्त आत्मा हूं, मैं निर्मोही आत्मा हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं, मैं बेहद का सन्यासी हूं, मैं लगाओ मुक्त आत्मा हूं, मैं परम धाम निवासी हूं, मैं संपूर्ण साक्षी हूं, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। इतना स्वयं को अलग कर दो दिनचर्या से, हर बात से, कुछ लेना देना नहीं है किसी से, मैं यहां का हूं ही नहीं। शुक्रवार की मुरली, तुम्हारी बुद्धि में विचार चलना चाहिए कि हम बाप के साथ अब जा रहे हैं, फुल स्टॉप। ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। सभी ने सुनाई ना सेंटरों पर मुरली, ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। शक्तिशाली संकल्प चाहिए सबसे डिटैच हो जाने के लिए। तो कहां सकाश देनी है, अपने खटिया को भी सकाश देनी है। कई लोग वहीं बैठकर फोन पर लगे रहते हैं, कई लोग उसी पर बैठकर भोजन भी खाते हैं, फिर बाबा का जो कमरा है उसको भी पवित्रता के प्रकंपन से भरना है। सेंटर को देखना है साक्षी होकर, यह है, और यह भी देखना है आज मैं यहां हूं, कल कहीं और होगी, ये मेरा नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि हम ही हैं तो ही ये चल रहा है, और डर है कोई दूसरा ना जाए, इसके लिए और जोर से पकड़ के है, और जितना हमने पकड़ा है उतनी बेचैनी और है, ये संकल्प लाना कि ये मेरा है ही नहीं। हम सोच रहे अगर मैं ना होगा तो इसका क्या होगा, ये चिंता है। परंतु वास्तविकता ये भी हो सकती है कि तुम्हारे बाद जो यहां आएगा वो तुमसे कई गुना अच्छा भी हो सकता है। हो सकता है तुम ही बाधा हो सेवाओं में, तुम नहीं रोक रखा है सेवाओं को, और हम सोच रहे हैं कि मैं अगर ना हूं तो ये स्टूडेंट्स का क्या होगा, इनको कौन पालना देगा, इनका क्या होगा, इन कन्याओं का, इन कुमारियों का। अरे तुम ही बाधा हो उनकी प्रगति में, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे बाद जो वहां आएगा वो तुमसे 10 गुना ज्यादा योग्य होगा। सेकेंड पॉइंट, डिटैचमेंट। सेकेंड पॉइंट डिटैचमेंट। सेवा केंद्र में रहने वाले भाई बहनों में आपस में अत्यधिक लगाव ना हो, लविंग डिटैचमेंट हो। दादी जानकी के पास एक बार विदेश की बहनें आ गई, कुछ बहनों का झगड़ा हो गया था इस सेवा केंद्र और उस सेवा केंद्र। दादी ने कहा ठीक है झगड़ा है तो ठीक है, लगाव नहीं चाहिए। लगाव नहीं चाहिए ये फिर भी ठीक है, क्योंकि लगाव में बेचैनी ज्यादा है। कंपैरिजन वैसे दोनों नहीं चाहिए, पर दोनों में तुलना अगर की जाए, ऑप्शन दिया जाए क्या चाहिए। संबंधों में डिटैचमेंट, लविंग डिटैचमेंट, एक साथ रहते हुए डिटैचमेंट। हम हमेशा बताते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की कविता, कविता या किताब शशीर कविता, जिसमें एक पुरुष है एक स्त्री है, दोनों को आपस में बहुत प्यार है और दोनों शादी करना चाहते हैं। स्त्री जो है, कन्या जो है बहुत अमीर है, पुरुष जो है वो थोड़ा गरीब है। तो वो स्त्री कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी पर एक शर्त है, हम दोनों शादी के बाद साथ नहीं रहेंगे। वो कहता है व्हाट, ये कैसी शादी है, शादी तो करेंगे पर साथ नहीं रहेंगे, ऐसी भी कोई शादी होती है। वो कहती है शादी करनी है तो ऐसी होगी, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाऊंगी उस ओर, बीच में झील होगी और मैं इधर होंगी, कभी अचानक मिल लिए तो मिल लिए, तुम उधर से नौका विहार मैं इधर से नौका विहार, हाय हेलो ओम शांति, पर मैं तुमको आमंत्रण नहीं दूंगी, तुम मुझे आमंत्रण नहीं दोगे, ऐसा कोई डिसाइडेड टाइम नहीं होगा मिलने का। वो कहते ये क्या, ये कोई विवाह है। वो कहती देखो ये ऐसा ही विवाह है, हाँ अगर तुम चाहते तो किसी और से विवाह कर सकते हो, परंतु मैं तो केवल तुमसे ही प्यार करती हूं और तुम्हारी ही यादों में पूरा जीवन बिता दूंगी अगर तुम शादी नहीं करोगे तो, पर शादी होगी वो ऐसी। तो वो कहता है आखिर क्यों। वो कहती है कोई भी संबंध फ्रेश तब तक ही रहता है जब उसमें डिटैचमेंट हो। जैसे ही दो व्यक्ति ज्यादा समीप आने लगते हैं, जैसे ही स्टूडेंट्स टीचर के ज्यादा नजदीक आने लगते हैं, टीचर में भी सारे अवगुण देखने लगते हैं। पहले पहले कुमार जब सेंटर पर आते हैं तो लगता है ये देवियां हैं, इनके लिए तो क्या करूं और क्या नहीं, और बाद में पता चलता है इनमें भी वही सब कुछ है जो हम में है, इनमें भी वही फीलिंग्स, वही सारे कमजोरियां कमी वीकनेसेस, ये तो मुझ में भी है, तो ये कहां से देवियां हुई। वो जो सम्मान आदर था कम होने लगता है, क्योंकि फैमिलियरिटी में आ गए दोनों भी। इसलिए सेवा केंद्र में रहते समय वो उस ओर हम इस ओर और बीच में झील, वो उस ओर हम इस ओर रह रहे साथ में, मिल लिए बहुत अच्छा ओम शांति, ये सेंटर से वो सेंटर में गए, वहां 4 दिन रुके, 4 दिन के बाद में बाय बाय, फिर वहां से फोन मत करना है, मिसिंग मैसेजेस, मिसिंग यू, याद आ रही है, वो हो रहा है, याऊं त्याऊं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, गए सेवा की, काम पूरा हुआ, आगे बढ़ो, कोई आसक्ति नहीं। आज इस बहन के साथ है, कल यहां से निकाल के वहां जाएंगे, वहां कोई और होगा, यही चाहिए, यही अच्छा है, यही जगह अच्छी है। डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप, आपस में भी और स्टूडेंट से भी। तीसरा, तपस्या, ऊर्जावान सेवा केंद्र अर्थात तपस्या, जहां तप की अग्नि हो, अगर हम ही सेवा केंद्र में अमृत वेला शक्तिशाली नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो घर पर बैठे हैं, क्या उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो शक्तिशाली अमृत वेला करें? क्या हम उनको सिखा भी सकते हैं? क्या ये अधिकार है? हाँ, भाषण जरूर दे सकते हैं। हाँ, कोई 6 बजे तक सोकर 8 बजे आकर अमृत वेले के महत्व पर भाषण दे सकता है, सारी सभा कहेंगी वाह 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 वाह, ऐसा तो अमृत वेले के क्लास हमने आज तक नहीं सुना। किसने कराया? जो अभी अभी 6 बजे उठा था। क्योंकि भाषण तो कला है, वो तो सब आप मास्टर है उसमें, पर भाषण का संबंध धारणा से नहीं, तपस्या की आदत डालनी है, सुबह भी और शाम को भी। हमने देखा है जिस सेवा केंद्र में जितना ज्यादा डिसिप्लिन है, वहां पर वातावरण अपने आप शक्तिशाली हो जाता है। और जहां सेवा केंद्र पर हंसी मजाक चल रही है, खेल कूद चल रहा है, व्यर्थ की बातें चल रही है, पैसों की बातें चल रही है, वहां क्वालिटी अपने आप कम हो जाती है। जहां प्लानिंग सेवाओं के ज्यादा बनते, तपस्या के कम, भट्टियों के कम और बाकी चीजों के ज्यादा। सेवा हमारा लास्ट सब्जेक्ट है, पहला ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, पहला त्याग, फिर तपस्या, फिर सेवा। सेवाओं के जंगलों में इतना ना खो जाओ कि तपस्या ही भूल जाए। मुंबई में सबसे पहली प्रदर्शनी लगी थी, बहुत अच्छी सफल हुई प्रदर्शनी, जब पॉप आए थे, अव्यक्त बाप दादा द्वारा संदेश आया था, 1 पेज का संदेश। बाबा ने कहा था बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की, बाप दादा बच्चों से बहुत खुश है, बच्चों में उमंग उत्साह बहुत ज्यादा है, बच्चे ऐसा किया, बच्चों ने वो भी किया, कितनी नवीनता है, सारा पेज भर संदेश था। और लास्ट में एक लाइन थी, पर बच्चे बाप दादा को भूले हुए है, फुल स्टॉप। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूले हुए है, सेवा तो कर रहे हैं पर वो बुद्धि से निकल चुका है। और फिर टकराव, फिर संघर्ष, फिर संस्कारों में टकराव। चौथा, मौन। चौथा, मौन, साइलेंस। बाबा ने कहा बैलेंस रखो, रमणीकता का, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु जहां केवल रमणीकता ही रमणीकता चल रही है और सीरियसनेस है ही नहीं, क्या उसे आश्रम भी कहेंगे? खुद ही मौन का अभ्यास करें और स्टूडेंट्स को भी मौन सिखाएं। कितना हम मौन का अभ्यास करते हैं? बहुत कम। बोलना 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 बोलना, वाणी को जैसे कोई लगाम ही नहीं है, नॉन स्टॉप बोले जा रहे। क्या बिना बोले भी सेवा हो सकती है? प्रयत्न तो करके देखो। सीधा ये कहता है ना, बाबा ने नहीं कहा है, हमें तो बोलना पड़ता है, सेवा है, ये है, ये हूं, फला है, ढला है। परंतु एक एक्सपेरिमेंट खुद करो, एक सेवा बहुत बातें करके की, दूसरी सेवा वही सेवा चुप रहकर की, और तभी बोला जब आवश्यकता थी, ऊर्जा ज्यादा जमा होगी मौन में, सीरियसनेस ज्यादा होगी, गंभीरता का गुण होगा। रमणीकता में खतरा है, अच्छी बात है रमणीकता, पर खतरे बहुत है उसमें, व्यर्थ की ओर स्लाइड करने के, नीचे जाने के। गंभीरता पावर है उसमें। नेक्स्ट, सादगी। सादगी, सिंप्लिसिटी। सेवा केंद्र ऐसा हो 5-स्टार होटल ना दिखे, ये ना भूलना कि ये आश्रम है। संसार में पैसों की कमी नहीं है, ना ही हॉल्स की कमी है, ना ही रिट्रीट सेंटर की कमी है, ना ही ऐसे बड़े बड़े मकानों की कमी है। विदेश में जाओ तो इससे 10 गुना अधिक ज्यादा है। हमारा कंपैरिजन वो नहीं है। हमारा सेंटर शक्तिशाली तब होगा जब उसमें सादगी होगी। बहुत अधिक चीजें हैं उसमें अगर रख दी जाए तो वो सेवा केंद्र कम और होटल ज्यादा लगता है। आने वाले ये ज्यादा पूछेंगे, ये पर्दा कहां से लिया, ये कहां से खरीदा, ये भोग का जो कपड़ा है ये कहां मिलता है, सारी बुद्धि उसमें चली गई। बैलेंस, सुंदर हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, जो चीजें आवश्यकता है वो सब हो, दिखने में भी आकर्षक हो, पर वो इतना अधिक ना हो जाए कि जो संज्ञा आश्रम की है वो दिखना ही बंद हो जाए। सादगी, सिंप्लिसिटी हर चीज में। नेक्स्ट, वातावरण में क्या ना हो। वातावरण में क्या हो और क्या ना हो, क्या हो में प्रेम हो, सहयोग हो, सद्भावना हो, आत्मिक दृष्टि हो, सबके लिए शुभ भावना, और क्या नहीं में गॉसिप्स, परचिंतन, परदर्शन, एक सेंटर पर बैठकर दूसरे सेंटर की बातें, एक सेंटर पर बैठकर दूसरी बहनें क्या कर रही है उसकी बातें, यहां बैठकर उस भाई ने क्या किया और इस भाई ने क्या किया वो बातें, परचिंतन, झरमोई झगमोई की बातें, ये निगेटिव ऊर्जा है, उसमें वातावरण की पवित्रता को नष्ट करता है, कीटाणु है उसमें, जर्म्स, अत्यधिक मनी माइंडेडनेस, अत्यधिक बिजनेस की बातें, अत्यधिक मीडिया 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 मीडिया, सांसारिक चर्चा, पॉलिटिक्स की चर्चा। सेवा केंद्र का वातावरण शुद्ध हो जिसमें आध्यात्मिक चर्चाएं हो। हां, मुरली सुना ली उस समय बहुत अच्छा, पर सारे दिन भर वहां क्या किया, सुबह सुबह किसी ने बहुत हेल्दी नाश्ता कर लिया, अंकुरित खाए और फल खाए, और सारे दिन भर में पिज्जा भी खा रहा है और भी कुछ खा रहा है, फिर तला हुआ भी खा रहा है सुबह से लेके शाम तक, तो शाम को पेट ठीक रहेगा या बिगड़ेगा। सुबह सुबह तो हम मुरली सुना दी, सब कुछ अच्छा है, और दिन भर में उसी कमरे में बैठकर दुनिया भर की सारी चर्चाएं हो रही है व्यर्थ की। हां, सेवा से संबंधित हो कोई और बात, तो ये तो वैसे ही हुआ। बातें तो बहुत है, पर अब हम चलते हैं मास्टर पालनहार स्थिति की तरफ। जो पालनहार आत्मा होगी उसमें कुछ गुण होने चाहिए। एक शब्द आप लिख के रखो अपने बुक पर, PALANCHAR, पालनहार, HAR, इंग्लिश शब्द है, PALANHAR, आठ शब्द है इसमें, आठ, एट अल्फाबेट्स। सबसे पहला शब्द है पी अर्थात प्रेम। मास्टर पालनहार स्थिति अर्थात सभी से हमारा प्रेम हो, ये नहीं कि ये VIP है, ये कम VIP है, ये आदिवासी है, ये वो है, ये आदिवासी है इसका कोर्स छोटी बहन तुम करा लो, हम तो बड़े का VIP का कराएंगे। क्या वो आत्मा नहीं है? हमको ये सेवा मत दो, हमको तो वो वाली सेवा चाहिए, भाषण वाली, ये किचन वाली सेवा दूसरे। चाहे लाखों लोगों के सामने भाषण देने की सेवा करो या बाथरूम साफ करने की सेवा करो, फल हमारी भावना के आधार पर मिलेगा। ये नहीं समझ लो कि जो भाषण दे रहे उनको ज्यादा मार्क्स है और जो झाड़ू मार रहे उनको कम मार्क्स है। मधुबन में हजारों लोग आते हैं, बहुत सारे भाषण सुन के चले जाते हैं, भाषण किसी को याद नहीं रहता, याद कौन रहता है, जो झाड़ू मारने वाला भाई था उससे 5 मिनट बात की और वो अपना 2 मिनट में अनुभव अपनी टूटी फूटी भाषा में सुनाता है, बस वही उसका जीवन परिवर्तन कर देता है। बाकी भाषण में तो टालियां बजाई और चले गए, वाह 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 बहुत बढ़िया भाषण, बहुत बढ़िया भाषण, पर जीवन नहीं परिवर्तन हुआ। जीवन तो परिवर्तन उस भाई से हुआ जो किचन में बेचारा सेवा कर रहा था, चाय बना रहा था, उसने कुछ ऐसी दो बातें बता दी और वो ऐसी दिल में चुभ गई, क्योंकि वो अनुभव की बातें थी, प्रेम की हम बात कर रहे थे। अपने प्रेम को सार्वजनिक कर दो। क्या करना है? मोह को कहो या प्रेम को, एक ही व्यक्ति से नहीं, बस ये इसी से मैं प्रेम करूंगा, नहीं। उदार चरिता नाम तू वासुदैव कुटुंबकम्, सारा जगत सारा विश्व मेरा है, सब मेरे हैं, कोई भी पराया नहीं है, सभी स्वजन हैं, मेरे अपने हैं। और जब अपने हैं तो अपनों के लिए अपनों सा ही व्यवहार। ये पराया है, ये दूसरे सेंटर का, ये उधर का, इधर क्यों आए तुम, तुम वहां के हो। अपने पराये का भेद, अपने प्रेम को क्या करना है, सार्वजनिक, क्योंकि यह ईश्वरीय प्रेम है, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, क्योंकि सभी एक बाप की संतान है। बाबा ने साकार मुरली में कहा है, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, सारे विश्व का बाप हूं। डोंट बी अंडर दैट रॉन्ग इंप्रेशन कि मैं केवल तुम्हारा बाप हूं, सारे विश्व का बाप हूं। हम भी सारे विश्व के मात पिता है, सारे विश्व की पालना हमको करनी है, एक की नहीं सबकी, कोई भी हो, यहां तक की एक रास की सूक्ष्म बात। गुलजार दादी कहीं गए थे, बहुत सारी छोटी बहनें आ गई कंप्लेंट लेकर बड़ी बहन की, कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, ये है, वो है। दादी ने उनको जो बात कही थी कहीं प्रिंट नहीं हुई है, बहुत सूक्ष्म बात है। दादी ने कहा था, तुम मां बनकर उसकी पालना करो। क्या कहा था? मां बनकर पालना करो। एक रीति से मैं आत्मा सभी की पालना करनी है, सभी ये समान लेकर रखे, छोटे हो, कोई भी हो, सूक्ष्म अंदर से बल मिलेगा इस संकल्प से। तो पहली चीज है प्रेम, दूसरा है ए आधा आदर, हर एक का आदर करना है, चाहे छोटी सी कन्या क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि कोई बुजुर्ग है तो ही आदर करे, नहीं, सबका आदर करना है। हमको याद है एक सेवा केंद्र में एक भाई 30 साल से रहता था, उसकी भी बड़ी इच्छा थी सेवा करने की, ज्ञान वाली सेवा, पर बड़ी बहन ने कभी कहा ही नहीं उसको। और एक बार जब कहा किसी का कोर्स कराओ, वो कहता है मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, क्या बताऊं। आदर अर्थात सम्मान अर्थात रिस्पेक्ट अर्थात ये देख ले कि उसे चाहिए क्या और वो उसे दे। रिस्पेक्ट केवल एज के हिसाब से नहीं, छोटी सी कन्या है, अभी अभी सेंटर पर आई है, पर क्या आपको पता है पिछले जन्म में कौन सी तपस्या कर आई है, क्या क्या जतन किए थे भगवान को पाने को, और अब उसने पा लिया। और हो भी सकता है कि तुम जिस संस्कार से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, वो उसमें है ही नहीं, तुम में सेंसिटिव नेचर है, उसमें वो है ही नहीं, तुम में दूसरों को खुद दुखी होने का स्वभाव है, उसको कभी दुखी देखा ही नहीं, चेतना की यात्रा में हमसे आगे है। सबको आदर, सबका सम्मान, चाहे ज्ञानी अज्ञानी, छोटे बड़े, सब। इसके लिए यहां पर एक बात जो नॉर्थ इंडिया में बहुत देखी जाती है, सभी आप कहकर बात करते हैं, अपने लिए भी हम, दूसरों के लिए भी आप, छोटा सा बच्चा है उसके भी आप, और हम कहने में एक सुरक्षा कवच है, एक है मैं आऊंगा। और जब आप संगली पर बैठते हो या भाषण की सीट पर बैठते हो, तब मुख से मैं ना निकले तो बहुत अच्छा। हमेशा यही कहे कि हमें एक बार ऐसा अनुभव हुआ, हम एक बार यहां गए थे, इस हम में बहुत ही सुरक्षा है, बजाय ये कहना कि मेरे पास, मैंने ऐसा किया, फिर मैं वहां गई थी, फिर वहां इतने लोग थे, फिर मैंने उनको कोर्स कराया। हम वहां एक बार गए थे, वहां इतने लोग थे, फिर हमने उनको इस तरह से कोर्स कराया। रूहानियत है ना इसमें, दूसरों को तुम नहीं, कौन, आप। सभी आदरणीय है, सभी आदर के पात्र है। पी ए एल, एल अर्थात लीडर, पालनहार स्थिति अर्थात जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, कोई भी चीज हो उसमें इनिशिएटिव, जो टेसो अर्जुन, हम आगे बढ़े, कोई जाने को तैयार नहीं है वो कार्य हम करें, जो सेवा के लिए तैयार नहीं है कोई, वो सेवा कहे कि हम जाएंगे वहां पर। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण कश्यप, उसने कहा बिहार में कोई गांव था सूखा नाम का, वहां पर लोग बुद्ध के बहुत ज्यादा विरोधी थे, तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा वहां पर। बुद्ध का शिष्य कहता है कि मैं जाऊंगा, पर बुद्ध ने उसको समझाया वहां लोग अच्छे नहीं है, तुम नहीं जाओ। तो बुद्ध उससे तीन प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न, यदि वो लोग तुम्हें बहुत गालियां दे तो फिर तुम क्या करोगे? जाते ही जैसे तुम मेरा संदेश देने लगोगे तो वो लोग तुम्हें गालियां देंगे, तो कहते हैं मैं तो इतना संतुष्ट रहूंगा कि वो उन्होंने मुझे गालियां ही तो दी, मारा तो नहीं, इसलिए जाऊंगा तो मैं जरूर, क्योंकि खाली गालियां दी ना, मैं मारा तो नहीं। दूसरा प्रश्न, यदि वो तुझे बहुत मारे तो तुम क्या करोगे? वो कहता है खाली मारा ना, मार ही तो नहीं दिया ना, तो इसके लिए जाना तो है ही उस बंजर भूमि जहां पर लोग विरोधी है। तीसरा प्रश्न था, अगर वो तुम्हें मार ही डाले तो क्या करोगे? वो कहता है अच्छा ही हुआ, वैसे भी तो जीवन व्यर्थ ही जा रहा था वैसे ही जीवन अनित्य है, यहां के सुख अनित्य है, और आपकी सेवा में शरीर छोड़ूंगा तो अगला जन्म भी ठीक ही होगा। लीडर अर्थात इनिशिएटिव लेने वाला, यह सेवा करनी है हाँ हम करेंगे, यह स्किल सीखनी है हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। निर्भय, निडर, नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार है, चैलेंजेस लेने के लिए तैयार है, मना नहीं करने वाले, ना ये मैं नहीं करूंगी, मेरे से इतनी होता, मैं नाजुक हूं, मुझे धूप लगती है, मेरी चमड़ी, मेरी गर्दन, मेरी पीठ, मेरी कमर, मेरा पेट, वहां का मौसम, वहां के लोग, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, ऐसा है वैसा है, याऊ है त्याऊ है, PAL। उसके बाद और एक ए, ए अर्थात पालनहार की स्थिति में, ए अर्थात आंतरिक शुभ भावना, शुभ कामना। चाहे किसी ने कितनी भी बेइज्जती से व्यवहार किया हो या कैसा भी किया हो, हमें उसके लिए शुभ भावना ही रखनी है। विदेश का एक उदाहरण है, एक महिला थी और एक पुरुष ने उसके साथ विकर्म किया। वो स्त्री बाद में सर्जन बनी, डॉक्टर, सर्जन, ऑपरेशन करने वाली, और वो पुरुष उसी के हॉस्पिटल में एक बार पेशेंट आया जिसको गोली लग गई थी और ऑपरेशन उसी को करना था। अब इस स्त्री को, ये वही पुरुष था, अब उसके सामने प्रश्न आया मैं क्या करूं। सुबह सुबह चर्च में गई और उसे एक दृश्य दिखा, जीजस क्राइस्ट नहीं है वो है वहां पर खड़ी, और जीजस क्राइस्ट जैसे बोलता है ये लोग, इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी है, वैसे वो अपने आप को वहां देखती है और वो कहती है कि मैंने इसे माफ कर दिया, और वो आकर उसको ऑपरेट करती है और वो बचता है। कितनी बड़ी भावना है, शुभ भावना। क्या इतना हमारे पास स्टॉक है? आंतरिक शुभ भावना और शुभ कामना हर एक के प्रति। पहली बार गए थे, अच्छे से किसी ने बात नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं है। हम अपना जाना चालू रखेंगे, कभी ना कभी तो तीर लगेगा। अपनी व्यक्तिगत अपमान को सेवा के मार्ग में नहीं लाना है। ए के बाद PALAN, एन अर्थात निरंकारिता। जो लीडर होगा, जो पालनहार होगा, जो मास्टर होगा, जिसको सबको लीड करना है, पूरी क्लास को, टीम को, उसमें सबसे बड़ा गुण है निरंकारिता का। उसका यदि अपना अहंकार हो, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो स्टूडेंट अपने आप उससे दूर जाएंगे। जितना निमित्त भाव हो उतने ही हम पालनहार हैं। उसके बाद वापस एक ए, एच, हद से परे। हद से परे, छोटी छोटी बातों में नहीं, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ और उसी की चर्चा, एक बात हो गई उसकी चर्चा 10 दिन तक चल रही है सेंटर पर। छोटी सी बात हुई अभी तक वही वही चर्चा चालू ही चालू, चालू ही चालू, चालू ही चालू, चालू, उसका कोई अंत ही नहीं है, स्टॉप कर ही नहीं रहा है कोई। सामने वाला भी वही पूछता है, हम भी वही पूछते हैं, वही बात घूम रही है बुद्धि में भी, घूम रही है अमृत वेला घूम रही है, खाली क्लास में जाओ मुरली पढ़ो सुनाओ और पूरा हुआ फिर से वही बात। स्टॉप, जो ऐसी व्यर्थ की बातें हुई है जीवन में, सेंटर में, सेवा केंद्र में, बाहर या जहां पर भी, उसकी चर्चा मुख से बोलना अर्थात वातावरण फैलाना। बाबा को सुना दो, पत्र लिख दो, बता दो एक बार और स्टॉप करो उसको वंस एंड फॉर ऑल। कब तक उसी बात को पकड़े हुए है और चल रही है वो बात अब तक नॉन स्टॉप। हद की जो भी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, व्यर्थ की बातें, उसको बड़ा नहीं कहो। बाबा ने कहा बड़ी बात को छोटा और छोटी को खत्म। हम जो है नहीं उसको छोटा और जो छोटी है उसको बड़ा। अगला है ए, ए ना, एच ए आर, आत्मिक दृष्टि। टीचर जो होगी, टीचर जो होगा, पालनहार जो है, जिसे प्रभारी है, जिसे सबको आगे अपने साथ चलाना है, उसकी कभी भी दैहिक दृष्टि ना हो, क्योंकि दैहिक दृष्टि होते ही उसकी स्थिति नीचे आ जाएगी। फिर वो पक्षपात करने लगेगा, फिर उसके फेवरेट्स बन जाएंगे, ये मेरा ज्यादा फेवरेट, ये दूर, इनको ज्यादा दो इनको कम दो, इनसे ज्यादा प्यार उनसे कम प्यार, क्योंकि आत्मिक भाव खो गया है। फिर पक्षपात आएगा, वो क्या कहते हैं, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी। सब स्टूडेंट्स है सेंटर पर और सबकी हम निमित्त आत्मा है जो सबकी पालना करनी है। और ये भी कि ऐसा नहीं कि जिनकी हम पालना कर रही है उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना है सूक्ष्म में। मुरली हम उनको सुना रहे हैं पर उनके जीवन में शायद ऐसा कोई गुण है, कोई एक विशेषता है जो हम में है ही नहीं, वो हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को, हाँ अपने आप को बॉस नहीं समझना है, ऑफिसर समझना नहीं है, ए तुम इधर आओ, तुम वो करो, तुम इधर जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, बॉसिंग नहीं करनी है। तब भी फिर स्टूडेंट भागते हैं, फिर ये सेंटर छोड़ के वो सेंटर पर जाते हैं, जहां प्यार मिलता है वहीं जाते हैं स्टूडेंट्स, ये भूलना मत। तुम ना दोगे तो वहां जाएंगे, क्योंकि उनकी प्यास प्यार की है, उनको तो मां चाहिए एक। तुम यदि ना मां बनो तो वो कहीं और तो जाना ही है उनको, आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे। हाँ कोई बुजुर्ग है और बड़े है, बड़े समझदार वो रहते हैं, वो नहीं जाते कहीं। लास्ट है आर, रोना प्रूफ, रूठना प्रूफ, रूसना प्रूफ। लीडर यदि खुद ही रोता रहे तो पालनहार आत्मा खुद ही रोती रही, वो कैसा दृश्य होगा, अष्टभुजाधारी दुर्गा शेर पर सवार और भक्त पीछे भाग रहे मां मां, और दुर्गा आगे भाग रही है बाबा बचाओ, बाबा कहां हो तुम, ये लोग बहुत तंग करते, कोई समझता नहीं मेरी प्रॉब्लम को, बाबा और भक्त मां मां करके पीछे से आ रहे हैं, और अष्टभुजाधारी दुर्गा शेर को भगा रही, वो कह रही है मां रक्षा करो, दुर्गा कहती है बाबा मेरी रक्षा करो, भक्त कहते हैं हमारी पुकार सुनो, मां कहती है हे बाबा मेरी पुकार सुनो। कल भी सुनाया था, एक बहन आई थी ओपीडी में, क्या तकलीफ है, वो कहती रोना आता है, हमने कहा कितनी बार, वो कहती दिन में 28 बार किसी ने कुछ कहा रोना चालू, किसी ने कहा ये उधर नहीं उधर रखो रोना चालू, किसी ने कहा भोजन बनाए नमक कम है रोना चालू, बात बात में रोना, आंसू तो बस यही रुके हुए है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 1987 की मुरली, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। सुने महावाक्य, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। रोते ही रहेंगे क्या, बात बात पे रोना, बात बात में नाराज, बात बात में उदासी, बात बात में बात नहीं करना, किसी ने कुछ दो बातें कह दी अब 3 दिन तक नाराज, मुंह उधर, डर लगता है दूसरों को कुछ बोलने में, बड़े बड़ों को डर लगता है इसको कुछ बोल दिया तो नाराज। हम एक सेंटर पर गए थे तो वहां की बड़ी बहन बता रही थी, ये जरा छोटी बहनों को बताना कुछ, बात बात पर धमकियां देती रहती है। मैं जा रही घर, कुछ हुआ कुछ बोला घर। पालनहार अर्थात जिसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए आठ। फिर से रिवाइज करते हैं एक बार, पी अर्थात प्रेम, प्रेम को बढ़ाओ, प्रेम का दायरा, प्रेम का वर्तुल, प्रेम की बाउंड्री, प्रेम का सरकमफेरेंस बढ़ जाने दो उसको, और ऊपर सब 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 उसमें आ जाए। आदिवासी, गरीब, दुखी, अमीर, रईस, सारे वीआईपीस, खाली वीआईपीस के लिए नहीं रखो, प्रेम सब। पी अर्थात प्रेम, ए अर्थात आदर, सभी का आदर करना है। ये देख लो किसको क्या चाहिए, किसको हम कैसे क्या दे सकते हैं, वही वास्तव में उसको रिस्पेक्ट देना है, उसकी जो आंतरिक इच्छा है। किसी की इच्छा है ना, किसी की इच्छा है उसको फेमस ही होना है, वो भी इच्छा पूरी कर दो, ये मनोइच्छित फल देने वाला यज्ञ है। जो जिस इच्छा से आता है उसको वो मिलता है। किसी को फेमस होना है, फेमस हो जाने दो। किसी को भाषण ही बहुत देने, भाषण देने दो। जिसको जो जे वांछिल तोते लाहो प्राणीदात, जिसको जो चाहिए, जो इच्छा है आंतरिक, वो पूरी आप कर दो तो वो बहुत दुआएं देगा तुमको। किसको आगे आगे करने की बीमारी है, भर्ती इसलिए हुए है यज्ञ में, एडमिशन ही इसलिए लिया है, स्टेज पर ही घूमते रहो ताकि सबकी नजर में रहो, हर फोटो में हम आने चाहिए, दादी है इधर। जिसको ये इच्छा है उसकी वो भी इच्छा पूरी हो जाती। बाबा देखो सबकी इच्छा पूरी करता है, सबकी, जिसकी जो इच्छा थी वो सब यज्ञ में पूरी हो जाती है। तो हम भी रिस्पेक्ट अर्थात जान ले क्या चाहिए। कोई स्टूडेंट आया है, उसको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, हम उसको ब्रह्मचर्य ना सिखाते बैठे। कोई कंपनी से व्यक्ति आया, उसको सक्सेस के मंत्र चाहिए और हम उसको सुखा सिखा रहे आत्मा परमात्मा। कोई ऐसी भटकते हुए आत्मा आ गई सेंटर पर और पता नहीं एक ही घंटा है, हम ऐसा उसको पकड़ लेते हैं कि आज छोड़ेंगे नहीं इसको, पूरा 7 दिन का कोर्स 1 घंटे में करा के रहेंगे। बड़ी बेरहमी से रहम करते हैं उस पर कि कहां जाओगे तुम, पूरा तुमको ज्ञान पिला के छोड़ेंगे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद में। शांतिवन में एक समर्पित भाई है, उसका लौकिक भाई आया था मिलने के लिए, जो भी उसको मिलता था ये इधर आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा। तीसरे दिन में वो सुबह शांतिवन के बाहर जाके बाहर ही घूमते रहता था शाम तक, फिर शाम को आता था अंदर, क्योंकि यहां जो भी मिलता है इधर आओ आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा। बड़ी बेरहमी के साथ रहम। तो आदर रिस्पेक्ट, तीसरा पी ए एल, एल अर्थात लीडर, लीडर अर्थात इनिशिएटिव लेने वाला, हर चीज में स्वयं को आगे करना, जिसमें कोई ना कर रहा है उसमें हम इनिशिएटिव ले, हां ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, ये जिम्मेवारी मैं लूंगा, तो पावर आएगी। नेक्स्ट आंतरिक शुभ भावना शुभ कामना, नेक्स्ट निरहंकारिता, नेक्स्ट हदों से परे, नेक्स्ट आत्मिक क्या आत्मिक दृष्टि, और लास्ट सबसे पावरफुल कौन सा है इसमें से, रोना प्रूफ। क्यों मतलब आप रोते हैं, वो पावरफुल क्यों लगा? ये खुशियों का जीवन है, आनंद का जीवन है, इसमें दुख दर्द पीड़ा नहीं आनी चाहिए। अगर है तो खुद ही को मुक्त कर दो, ये आंसू रोने से कुछ नहीं होने वाला है। ब्रह्मा कुमारी रोने के लिए थोड़ी ना बनी है, विश्व का कल्याण करने के लिए बनी है। तो हमें अपनी स्थिति को मास्टर पालनहार बनानी है, जैसे बाबा ने बनाई थी। सभी की पालना करनी है, मां बनकर पालना करनी है, अन्नपूर्णा मां बनकर पालना करनी है, और सेवा केंद्र का जो वातावरण है, जो कन्याएं हैं छोटी छोटी उनकी भी पालना, जो बड़े हैं सूक्ष्म में भी कभी कभी जब कुछ हो जाता है ऊपर नीचे, हमें सहन करना, सामना करना, समर्पण अर्थात सिक सिक झुक झुक मरमर। ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से डरना क्या, और ओखली कौन सी है, ये यज्ञ ओखली है, ओखली कौन सी है, सेवा केंद्र ओखली है, ओखली कौन सी है, समर्पित जीवन ओखली है, ओखली कौन सी है, ये पब्लिक लाइफ है। ब्रह्मा कुमारी इज अ पब्लिक लाइफ। आप पब्लिक सेक्टर पर हो, प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो, कुछ भी हो जाए तो सरकारी अस्पताल में कुछ हो जाए तो बहुत कुछ करते हैं, प्राइवेट में इतना नहीं कर पाते। सेंटर एक पब्लिक सेक्टर है, आप स्टेज पर हो, ये स्टेज पर रहना अर्थात ओखली, और जब यहां हो तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कुछ नहीं होगा, मूसल तो झेलनी पड़ेगी, परंतु भगवान साथ है तो सब कुछ सहज है। अच्छा, ओम शांति।